ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। केरल में वायनाड में हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या 165 हो गई है। ये संख्या बढ़ने की आशंका है। सेना, नौसेना, वायुसेना, आपदा मोचन बल, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर राहत अभियान चला रही हैं। अनेक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। कुछ शवों को बाहर निकाला जा रहा है। इस क्षेत्र में डिफेंस सिक्योरिटी कोर सेंटर और प्रादेशिक सेना की 4 राहत टुकड़ियां तैनात की गई हैं और आवश्यक राहत उपकरण वायनाड पहुंचाए जा रहे हैं। सशस्त्र बलों ने कल रात प्रभावित इलाके से 70 शवों को निकाला और लगभग 1000 लोगों को बचाया गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने आज वायनाड का दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरल सरकार को वायनाड में मूसलाधार वर्षा और भूस्खलन की पूर्व चेतावनी इस महीने की 23 तारीख और फिर 24 और 25 तारीख को दे दी गई थी। वायनाड में हुई तबाही को लेकर आज राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान हस्तक्षेप करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि 26 जुलाई को एक और चेतावनी जारी करके अत्यधिक तेज वर्षा, भूस्खलन, जमीन धंसने और संभावित जनहानि का संकेत दिया गया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 9 टीमें पहले ही केरल भेज दी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने समय रहते फंसे लोगों को नहीं निकाला। गृह मंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें पहुंचने के बाद यदि राज्य सरकार ने सतर्कता बरती होती तो वायनाड में हुए नुकसान को कम किया जा सकता था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को सूचित किया कि केंद्र ने घटना के बाद से राज्य को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बचाव और तलाश अभियान चला रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि बजट विकास, रोजगार, कल्याण, पूंजी निवेश और वित्तीय समीकरण जैसी प्राथमिकताओं के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है। वे आज राज्यसभा में बजट पर बहस का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य में विश्वास करती है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट ने सहकारी संघवाद को अधिक समर्थन का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में आवंटन में कटौती के विपक्ष के आरोप को खारिज किया। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राजस्थान में हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने आज दोपहर राजभवन में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने श्री बागड़े को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के 18वें राज्यपाल बन गए हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमदर ने श्री माथुर को सिक्किम में राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और 1983 बैच की आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुश्री सूदन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे 1 अगस्त को कार्यभार संभालेंगी। संघ लोक सेवा आयोग ने पूजा खेड़कर की अस्थायी उम्मीदवारी रद्द कर दी है और उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया है। आयोग ने उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच के बाद सुश्री खेड़कर को सिविल सेवा परीक्षा 2022 में नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। पेरिस ओलंपिक में मुक्केबाजी में महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में लवीना बोरगोहाइन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने अपने अपने मैच जीतकर सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टेबल टेनिस में श्रीजा अकुला ने महिलाओं के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अकुला ओलंपिक में टेबल टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। निशानेबाजी में स्वप्निल कुसाले पुरुषों के 50 मीटर थ्री पोजीशन स्पर्धा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।